नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विश्व स्तर पर अग्रणी बनाने के लिए इंडिया एआई मिशन के तहत 500 से अधिक डेटा लैब विकसित करेगी। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने उपभोक्ताओं को लाभ सुनिश्चित करने के लिए पैकेजिंग नियमों सहित संशोधित परामर्श जारी किए। नई जीएसटी दरें सोमवार से लागू होंगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने मॉनसून के बाद चारधाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा फिर शुरू करने की मंजूरी दी। भारत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से विश्व स्तरीय सुविधाजनक बंदरगाहों का निर्माण करेगा। अमेरिका ने गाजा में तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम लागू करने के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर फिर वीटो का इस्तेमाल किया। और एशिया कप 2020 क्रिकेट में ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज शाम भारत का सामना ओमान से होगा। समाचार विस्तार से। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजिटल निजी डेटा संरक्षण नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है और आने वाले दिनों में इन्हें जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का लोगो जारी करते हुए कहा कि इसकी रूपरेखा तय करने के लिए 3,000 से अधिक परामर्श किए गए।
More than 3,000 consultations were held over a very long period to come up with this entire framework. So that framework we will be launching in the coming days, hopefully before 28 September.
श्री वैष्णव ने कहा कि भारत में अभी 38,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू हैं और निकट भविष्य में इनकी संख्या बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि 500 से अधिक डेटा और एआई लैब के विस्तार से समावेशी विकास, व्यापक प्रौद्योगिकी तथा एआई और इलेक्ट्रॉनिकी में वैश्विक नेतृत्व संभव होगा। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अगले वर्ष एआई इंपैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और विभिन्न देशों के शासनाध्यक्ष इसमें भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का लक्ष्य स्पष्ट किया है। कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में जीएसटी सुधार समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य देश की कर और राजस्व प्रणाली को सरल तथा आधुनिक बनाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन संशोधनों से पहले पिछले 8 वर्ष से लागू जीएसटी रूपरेखा की व्यापक समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि वस्तु और सेवा कर दरों में कटौती के बाद नई दरें दुर्गा पूजा से पहले सोमवार 22 सितंबर से लागू हो रही हैं। इस बीच उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जीएसटी की नई दरों को देखते हुए संशोधित परामर्श जारी किए हैं। एक रिपोर्ट।
परामर्श के अनुसार विनिर्माताओं, पैकर्स और आयातक 22 सितंबर से पहले विनिर्मित और बिना बिके पैकेज पर संशोधित मूल्य का स्टिकर लगा सकते हैं, लेकिन पैकेज पर पहले से छपा अधिकतम खुदरा मूल्य स्पष्ट दिखना चाहिए। मंत्रालय ने परामर्श में जीएसटी संशोधन लागू होने से पहले की पैकेजिंग सामग्री या रैपर के अगले वर्ष मार्च तक या पुराना स्टॉक खत्म होने तक उपयोग की अनुमति दी है। परामर्श में यह भी कहा गया है कि कंपनियां नया स्टिकर लगाकर या पैकेज के किसी उपयुक्त स्थान पर प्रिंट कर अधिकतम खुदरा मूल्य सही कर सकते हैं। सरकार ने खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को संशोधित जीएसटी दरों के बारे में सूचित करने के लिए विनिर्माताओं, पैकर्स, आयातकों को समुचित उपाय करने को कहा है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया सहित सभी संभव संचार माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है। मंत्रालय के अनुसार इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि उद्योगों पर अनुपालन का अधिक बोझ न पड़े, जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचे। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस संबोधन में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य कर संरचना को आसान बनाना और आम लोगों पर वित्तीय बोझ कम करना है। आज हम ऑटोमोबाइल उद्योग में इन सुधारों के संभावित प्रभावों का उल्लेख कर रहे हैं।
नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने 350 सीसी तक के दो पहिया वाहनों पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दी है। जीएसटी में इस कटौती से निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारों, युवा पेशेवरों और गिग वर्कर्स को राहत मिलेगी, जो दैनिक जरूरतों के लिए किफायती परिवहन पर निर्भर हैं। वहीं छोटी कारों पर भी जीएसटी घटकर 18% हो गई है, जो पहले 28% के स्लैब में हुआ करती थी। इस कदम से मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कारें और अधिक किफायती होने की उम्मीद है। साथ ही ऑटो सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी कम करने से विनिर्माण, बिक्री, सेवा और वित्त क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नए जीएसटी दरें सोमवार से लागू होंगी। शिवांग के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एनडीए सरकार केंद्र के पूर्ण सहयोग से बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 11 वर्षों में 14,85,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी है। बेगूसराय में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार यात्रा का उद्देश्य वोट बैंक की राजनीति है।
यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था, यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था, यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था, यात्रा का विषय हर गांव हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था, यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि मंत्रालय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक तथा सीखने की प्रक्रिया को अधिक आनंददायक और विद्यार्थी केंद्रित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय देश के बच्चों को विश्वस्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से विश्वस्तरीय सुविधाजनक बंदरगाहों का निर्माण करेगा। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य विभाग ने अमेरिका के खाद्य तथा कृषि संगठन के साथ तकनीकी सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत देश के 3 प्रमुख बंदरगाह दीव में वनकबरा, पुदुचेरी में कराईकल और गुजरात के जखाऊ बंदरगाह पर 360,80,00,000 रुपये निवेश किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र से अभिप्रेरित होकर परिवर्तन तथा प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज महिला सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया जा रहा है।
पिछले 11 वर्षों में सरकार ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए व्यापक नीतिगत सुधार किए हैं। नारी शक्ति अब एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जो प्रत्येक महिला को सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन यापन में सक्षम बनाता है, चाहे वे शहरी या ग्रामीण परिवेश से हों, युवा या वृद्ध हों। यह अभियान सभी महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल देता है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में संवैधानिक सुधार उपायों तथा हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध ऐतिहासिक कानूनों से लेकर परिवर्तनकारी योजनाओं तक अब प्रत्येक क्षेत्र में महिला विकास के स्थान पर महिला नीति विकास की भावना पर बल दिया जा रहा है। पिछले वर्ष दिसंबर में हरियाणा में बीमा सखी योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वर्तमान समय में महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।
लंबे समय तक हमारे देश में ऐसे अनेक काम थे जो महिलाओं के लिए वर्जित। भाजपा की हमारी सरकार ने बेटियों के सामने से हर बाधा को हटाने की ठानी। आज आप देखिए सेना के अग्रिम मोर्चों में बेटियों की तैनाती हो रही है। खेल का मैदान हो या पढ़ाई का, बेटियां हर क्षेत्र में बहुत आगे चल रही है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के भी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के आंकड़े 918 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 930 हो गया है। जनवरी 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना समूचे देश में लाखों युवा लड़कियों के लिए आशा और सशक्तिकरण की एक किरण है। सरकार स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को स्थायी तौर पर न्यूनतम 1,00,000 रुपए प्रतिवर्ष की आय अर्जित करने के लिए लखपति दीदी पहल भी लागू कर रही है। ये पहल भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है। जम्मू कश्मीर निवासी शबनम कादिर ने बताया कि कैसे उन्होंने स्वयं सहायता समूह से अपने जीवन को एक नई दिशा दी।
जब से उम्मीद NRLM हमारे यहाँ आया तो हमें बहुत सारा सपोर्ट मिला। इससे उम्मीद से मैंने बहुत सारा लोन लिया जिससे मैंने अपनी ऑटोमेटिक राइस मिल स्टार्ट की है, जिसमें हम SAG मेंबर्स लगभग 4-5 मेरे एम्प्लॉयज हैं।
महिलाएं अब राजनीति से लेकर रक्षा बलों और विमानन क्षेत्र तक सभी क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
नागर विमानन महानिदेशालय ने मानसून के बाद चारधाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा फिर शुरू करने की अनुमति दे दी है। नागर विमानन मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पूरी छानबीन और सभी पहलुओं की जांच के बाद ये मंजूरी दी गई। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने महानिदेशालय, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और राज्य सरकार के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कई समीक्षा बैठकें की। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं देश के पूर्वी और मध्य भागों में भी अगले दो दिन तक ऐसी ही वर्षा होने की संभावना है। उधर हिमाचल प्रदेश में मॉनसून अंतिम चरण में है, लेकिन वर्षा अब भी जारी है। इधर हैदराबाद के कई हिस्सों में कल लगातार दूसरे दिन भी बारिश हुई और कई रिहायशी कॉलोनियों में जल जमाव हो गया। अमेरिका ने गाजा में तत्काल और प्रभावी संघर्ष विराम तथा बंधकों की रिहाई के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर फिर वीटो का इस्तेमाल किया है। सुरक्षा परिषद के अन्य सभी 14 सदस्यों ने इसराइल से फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता पहुंचाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया और गाजा की स्थिति को अत्यंत गंभीर बताया। एशिया कप T20 क्रिकेट में ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना ओमान से होगा। अबुधाबी में कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में मैच शाम 8 बजे से खेला जाएगा। भारत दो मैचों में 4 अंक के साथ पहले ही सुपर फोर में प्रवेश कर चुका है। इससे पहले प्रतियोगिता में कल श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराकर सुपर फोर में प्रवेश किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है भरत नाज।
धन्यवाद निखिल। अखबारों ने अलग अलग समाचारों को मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया है। पंजाब केसरी, वीर अर्जुन और नवभारत टाइम्स ने मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के हवाले से लिखा है, जल्द सुलझ जाएगा अमरीकी टैरिफ विवाद, दोनों देशों के बीच बातचीत जारी। इकोनॉमिक टाइम्स, दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने के लिए 30 सितंबर अंतिम तारीख। अमर उजाला लिखता है, मारुति ने GST सुधार के बाद कार की कीमतों में बड़ी कटौती की। हिंदुस्तान और राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, सेबी ने हिंडनबर्ग मामले में गौतम अडानी को क्लीन चिट दी। बिजनेस भास्कर की खबर है, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 9% बढ़कर 10,82,000 करोड़ रूपये। हरिभूमि के अनुसार अब पेमेंट ऐप से क्रेडिट कार्ड के जरिए नहीं भर पाएंगे मकान का रेंट, फिनटेक कंपनियों ने बंद की सेवा। जनसत्ता ने कवायद शीर्षक से लिखा है, चांद और मंगल मिशन पर मिलकर काम करेंगे भारत तथा अमेरिका। देशबंधु की खबर है, अब डाकघरों में बिकेगी BSNL की सिम, 1,65,000 डाकघर देंगे सुविधा। दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका के खेल पन्ने की सुर्खी है, अंतिम पंघाल ने क्रोएशिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विश्व स्तर पर अग्रणी बनाने के लिए इंडिया AI मिशन के तहत 500 से अधिक डेटा लैब विकसित करेगी। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने उपभोक्ताओं को लाभ सुनिश्चित करने के लिए पैकेजिंग नियमों सहित संशोधित परामर्श जारी किए। नई GST दरें सोमवार से लागू होंगे। नागर विमानन महानिदेशालय ने मानसून के बाद चारधाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा फिर शुरू करने की मंजूरी दी। भारत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से विश्वस्तरीय सुविधाजनक बंदरगाहों का निर्माण करेगा। अमेरिका ने गाजा में तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम लागू करने के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर फिर वीटो किया और एशिया कप में आज भारत का सामना ओमान से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।